Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे. खास खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे. उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमरीश जी.
और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं लालिमा अनेजा डेंग.
Thanks, Amrish. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, benchmark domestic indices close with gains. Sensex increases by over 300 points. Nifty closes above 24,860. Major Asian indices end mixed. And gold prices scale to a new high, crosses over 1,09,000 in multi-commodity exchange.
घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 300 अंक से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. निफ्टी 24,860 के पार बंद हुआ. प्रमुख एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा और सोना नई ऊंचाई पर पहुंचा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मूल्य 1,09,000 को पार कर गए. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 314 अंक यानी 0.39% की तेजी से 81,101 अंकों पर बंद हुआ. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 95 अंक यानी 0.39% बढ़कर 24,868 अंकों पर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी बढ़त का दौर दिखाई दिया. मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों में ही 0.2% की बढ़त दर्ज की गई.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड विद मार्जिनल गेन्स टुडे. द सेंसेक्स गेन 314 पॉइंट्स और 0.39% टू क्लोज एट 81,101. Similarly, Nifty added 95 points or 0.39% to settle at 24,868. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also displayed a positive trend. The mid-cap index advanced 0.2%, while the small-cap index rose over 0.2%.
Sensex mein shamil 30 mein se 19 companies mein badhat dikhai di. Badhat darj karne wali pramukh companies mein Infosys ka share 5%, Tata Chemicals ka share 2.4% se adhik aur Adani Ports ka share 2.4% tak badha. Giravat darj karne wali companies mein Trent ka share 1.8%, Eternal ka share lagbhag 1.2% aur Ultratech Cement ka share 0.9% tak gira.
In sectoral indices at the BSE, 13 out of 21 sectors logged gains, with the IT pack emerging as the top performer. Focused IT surged almost 2.9%, IT rose nearly 2.8%, and tech added almost 2.2%. Among the top laggards, realty and oil and gas both dipped 0.3% each, energy lost 0.2%, and auto slipped over 0.1%.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 15 पैसे बढ़कर 88.11 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 97.40 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.
Right, Udayan. So after going through this report, how would you analyze the rise in Sensex, particularly after the GST 2.0 reforms?
Yeah, so now markets are being able to dissect as more details are coming as to which are the sectors which would benefit you know, sometimes you need the granular details. So those things are happening. And it's giving a better sense of how to, what to expect. And it's pretty clear that it's almost like a stimulus. So it's possibly a stimulus to the tune of about, I reckon, about 45 to 48,000 crores.
Uh-huh.
Now, there would be experts who would still say that more is required. But the point here is that this was in response to a certain development. So if you have an upside out there, you manage to thrash that agreement, which is the elephant in the room. If you manage to do that, then some of those things are not required. So I think the government has possibly done a reasonably okay job, smart job. Mm-hmm. This was a reasonably low-hanging fruit. And but it has a fantastic signaling effect. When if you're doing something like a GST is something like, which is affecting everybody.
Yes.
So income tax is not going to be affecting everybody. The people who are not liable to pay income tax, it doesn't affect them.
Mm-hmm.
But every time you buy a pack of small pack of biscuits also, you are paying GST.
Mm.
So this is a good, these are smart moves. As Lalima, the saying in English goes, the proof of the pudding lies in eating. So how well it would be executed, will the pass through happen? So the government has to ensure that actually this consumers benefit, because the government is betting on a consumption boost. So
yes,
that pass through has to happen. Mm-hmm. And we have had a mixed track record in the past when it comes to pass through. So we will not elaborate on that at the moment. But I think people would agree that the proof of the pudding is still remains to be seen. But all in all, there's a certain momentum. You had a development you were not expecting, and you responded, and it's a pretty good response. And then you work out some of the, you try to contain some of the other things from that adverse development. If you manage to do that, then you need not come out with all your guns blazing. You keep the ammunition there for a better opportunity. So all in all, it's the market has obviously taken it in a positive way. Experts have taken it in a positive way. And I also agree with that. And if the further requirements happen, then I'm sure there are other arrows in the quiver of the government.
लेकिन उदयन, जैसे जीएसटी के आपने इम्पैक्ट की बात की, लेकिन इसके अलावा और फंडामेंटली आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो बाजार को इस लेवल तक अभी तक बनाए हुए हैं और इस तरह की बढ़त भी जैसे आज हमने देखी?
देखिए, बहुत टेम्प्टिंग हो जाता है. आई नो इट्स अ क्लीशे, इस प्रोग्राम में शायद कितनी बार कहा गया होगा, मैंने खुद कहा है, बट आई थिंक स्टिल द हीरो of this piece is the middle class, the investing public. उन्होंने investment करना छोड़ा नहीं है. वो विश्वास करते हैं भारत के भविष्य में. भविष्य में अगर economic जो आर्थिक भविष्य है, the future, उसमें अगर आप विश्वास करते हैं, तब क्योंकि आप याद रखा जाए कि stocks में जब आप निवेश करते हैं directly या indirectly, तो तब आप upbeat होंगे तभी करेंगे. नहीं तो आप क्या होगा, आप रिट्रीट करके लोअर रिस्क फिक्स डिपॉजिट में चले गए. वो नहीं हो रहा है, वो अभी भी मूव कर रहा है. तो जाहिर है कि एक नया वर्ग का निर्माण हो चुका है, क्रिएट हुआ है, जो निवेश कर रहा है, वो जो समझ रहा है, जिसको जो एकदम से थोक में पैसा नहीं लगा रहा है, रेगुलरली निवेश कर रहा है और वो पैसा रेगुलरली आ रहा है. अब ये तर्क किया जा सकता है कि नहीं जी, ये मतलब ये कम हो गया, रेट कम हो गया, पर मतलब इतना जो एक एक इफेक्ट था उसको काउंटर कर रहा है. जैसे आर्म रेसलिंग होते ना, हाथों की जो कुश्ती लड़ी जाती है, तो उधर से अगर फोर्स आए, दिस वाज अ काउंटर वेलिंग फोर्स. तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज रहा है. और ये जब तक रहेगा, नहीं तो पहले अमरीश जी, आज से 25 साल पहले वेस्ट में या अमेरिका में कुछ छींकता था, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हो जाता था. अब वो हम लोग उठ के खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है. ये कितनी बड़ी बात है ये बताना मतलब एक प्रोग्राम में भी मुश्किल है, क्योंकि ये आपके आपको आप में एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है.
राइट, ऑन दैट पॉजिटिव नोट फ्रेंड्स, लेट्स गो इन फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, डोंट गो अवे. वेलकम बैक. सो अगेन वी टॉकिंग अबाउट द सेंसेक्स एंड द ट्रेंड्स. The recent GST reforms, we assume that they will boost urban consumption, particularly because the festivals are now coming. Also, I would like you to analyze a bit for us the impact of on auto, MSMEs and the IT broadly.
Well, let's start with the last one. So IT obviously has some challenges knocking at its door. There's a lot of money which our companies earn through exports. Where it is about people going to the near the site, client site, and doing it. And US is a major market. There are overtones and undertones and whatnot, bill being introduced and so on and so forth. That is some, those are not the kind of headlines that make you feel confident. I mean, if you're going to be investing in a company, if that those headlines are coming, you don't feel great about that, because a revenue line, a significant revenue line of certain companies will get impacted, potentially get impacted. But then that's up there, that's creating uncertainty. So naturally, the stock prices and other things, the sentiment around these stocks will get, you will see that influence. It will happen. Mm-hmm. This is not, the last word has not been said. You can expect this to continue for quite some time. Mm-hmm. The other interesting bit is also there's a lot of other, when we say IT, it's a pretty, we don't call it tech as in the US. There's a lot of tech work also happening. So if you have these winners coming out and suddenly moving in and growing fast and coming up with the IPOs, and you know, these things happen fast. Mm-hmm. So if there's that enabling mechanism happens, so we might end up changing the lexicon from IT to tech. So anyway, let me leave it at that. So It will have its challenges. There's no doubt about it. Your biggest market, and there are things being talked about which potentially can impact revenues. Impact will be there. Now, I think you were talking about auto. Auto looks really exciting to me, simply because, of course, car length, this, that, whatever, whichever segment is going to benefit. Indirect taxes were always a very large part of the car price. There's no doubt about it. And the question was, do we want to enable people who want to buy cars? Ideally, it should be a harmonious balance between public transport and cars. But this really helps the smaller people who are trying to move from two-wheelers into cars. It'll help, and you'll probably start seeing a lot of good results coming. That was also the segment, by the way, which was suffering.
Yes.
So
consumption had come down.
Yes. So it's coming at a very good time. You will probably see some really nice results, outcomes, shall I say, of that. I think the third one was, I think you're
MSMEs.
Talking
MSMEs. Yes, in fact, yeah, we have a story right
yeah,
now.
Yeah, so that. MSMEs, Lalima does have a challenge again. There were a lot of MSMEs who were again exporting to the US, so leather goods, apparel. Stuff like that. So the question is, the trick will be how you're going to cushion that, how you're going to help them, help these units look at other markets. So that would be a challenge. But then there are MSMEs also linked to the auto sector. There are MSMEs linked to the other industries,
right,
which are benefiting from the GST. So those are the MSMEs I suspect, or rather I should say I expect for them to do well. But enabling mechanism has to be there. The bank loans and credit facility, trade finance, and any other thing that you can do to make life simpler and easier, doing business easier for them, might just be, you know, things like large corporates paying to MSMEs. Those are important things.
Well, we have a story linked to that. The GST Council has simplified the indirect tax system into a two-tier structure of 5%. These reforms have reduced tax rates in many sectors, easing the life of citizens. Today, we look at the reforms undertaken for micro, small and medium enterprises.
For e-commerce, the recent GST reforms are helping to ease both making online shopping cheaper and business more competitive. First, the cost of packing materials like cartons, boxes, trays and packing paper has came down. With GST reduced to just 5%, sellers now spend less on each shipment. This is especially helpful for MSMEs and food processing units. Meanwhile, trucks and delivery vans, which is now under 18% GST instead of 28%. This means cheaper vehicles, lower freight rates, and more efficient last miles delivery. Vice President of Vilayat Industries Associate Harish Joshi hailed the new GST setup as a major reform initiative from the MSME sector's perspective.
मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी कि जो पहले टैक्स की वजह से बहुत सारे लोग उसको खरीदने से अपने आप को दूर रखते थे, वैसे इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में, कि जिस तरह से जीएसटी के दर कम होने की वजह से स्थानिक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसको सरलता से खरीद पाएंगे।
विद रहीसुद्दीन, ईशानी यादव, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.2% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 1.2% तक बढ़ा। दूसरी ओर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा। जापान का निकेई 0.4% से अधिक और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 0.5% से अधिक की गिरावट चल रही थी। दूसरी ओर फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी दोनों में ही 0.2% से अधिक की बढ़त दिखाई दी।
A look at the US markets now. Well, US stocks ended in positive territory on Monday, with the Nasdaq registering a record closing high lifted by a rally in a leading technology company. The market sentiment remained optimistic amid bets on rate cut by Federal Reserve in its meeting next week. The tech-heavy Nasdaq Composite Index gained over 0.4% to settle at 21,799. Dow Jones Industrial Average rose 0.25% to end at 45,515, and S&P 500 advanced 0.2% to 6,495. Where do you see the U.S. markets going?
Well, a lot of data is coming out, Lalima. So what's going to happen in terms of inflation data? So that's, I think, coming out in a couple of days. And that, along with the previous employment print that came out, which wasn't too flattering, that will lead up to the Federal Reserve meeting, which is going to take some kind of a decision on rates. It's almost certain that there's going to be a 25 basis point. Now there's a whole set of people, maybe small but still significant, who are expecting a slightly larger rate cut. There's also an interesting thing happening. So there's the employment data probably is going to come out with there. The bureau is going to come out and talk, say that we are revising the number of jobs we said were created. The numbers was actually lesser. So that is another data point that might just come in, and that might lead on to your September 15th Federal Reserve meeting, and the rate related decision will be taken, and that together will I'm sure will determine the course of the markets in a very big way, including in India.
और यहाँ पर हम मार्केट मंत्र कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन्द्र चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी वीणा राम गुलाम आज से 16 सितंबर तक 8 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राम गुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। मुंबई में वे एक व्यापारिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं तथा दोनों देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों के स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत के महासागर दृष्टिकोण में मॉरिशस का प्रमुख स्थान है।
Well, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that trade patterns and market access have become prominent issues in the global economic discourse. Addressing the BRICS Leaders Summit virtually, Dr. Jaishankar emphasized the need for constructive and cooperative approaches to promote sustainable trade, cautioning that increasing barriers and complicating transactions will not help. He added that the international trading system is based on the foundational principles of open, fair, transparent, non-discriminatory, and a rules-based approach with special and differential treatment for developing countries. How would you analyze this, Odia?
It's very hard to disagree with what has been said. Mm-hmm. Perhaps because we are all Indians and we understand what's being spoken of.
Yes, yes.
So it's worth pointing out, Lalima, that we have been following all the rules. India has been following all the rules. It's been for a multilateral, rules-based. It's other people who laid down these rules are having a problem. So it's like somebody who was powerful set up the rules in their favor, and now they're having problem because people like us are doing well, beginning to do well. So no prizes for guessing what the conclusions should be.
लेकिन उदयन, जो अभी मौजूदा हालात हैं, खासतौर से अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ को लेकर संकट खड़ा किया गया है, ऐसे में ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाती है भारत के लिए, आप क्या कहेंगे?
देखिए, अगर ब्रिक्स को अगर उस महत्व ऑन पेपर या एक जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें तो है, थियोरी में तो है, पर प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे ये अपने में एक चैलेंज है। क्योंकि ये जो देश हैं ये सिग्निफिकेंट तो हैं, पर अगर आप व्यावहारिक रूप में ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स आप अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाते नहीं हैं ब्रिक्स के अम्ब्रेला के अंडर, तब इसको उतनी सीरियसली नहीं लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा जितना उससे लेना चाहिए। देखिए, आसियान और चाइना के बीच में जैसे संबंध है, आपके ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देशों के बीच में जैसे संबंध है, अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा के बीच में जो है, उस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए।
All right. A look at the oil prices now. Crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.8% up at $66.55 per barrel. And WTI crude was also trading over 0.8% up at $62.79 per barrel when reports last came in.
Or,
गोल्ड की बात करें, वेल, गोल्ड प्राइसेस हिट फ्रेश रिकॉर्ड्स हाई टुडे। गोल्ड फ्यूचर्स विद अक्टूबर एक्सपायरी क्रॉस द की 1,09,500 रुपीस पर 10 ग्राम्स मार्क ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX अर्लियर टुडे। गोल्ड फ्यूचर्स विद दिसंबर एक्सपायरी ऑन MCX आल्सो हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,10,400 रुपीस पर 10 ग्राम्स टुडे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विद फेब्रुवरी एंड अप्रैल एक्सपायरीज आल्सो हिट फ्रेश लाइफ टाइम हाईज। दैट्स really high, Udayan, isn't it? 1 lakh plus.
Yeah, absolutely. It's been going up.
उदयन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हाल भी जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.7% बढ़कर 1,09,208 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.1% से घटकर 1,25,367 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ SP शर्मा ने आकाशवाणी से बात करते हुए सोने के मूल्यों में बढ़ोतरी के प्रमुख कारण गिनाए।
गोल्ड प्राइसेस में बहुत तेजी बनी हुई है क्योंकि जो ग्लोबल कंडीशंस हैं वो गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं, खास करके जो US फेड रेट से संभावना है कि आने वाले टाइम में 25 से 50 बेसिस पॉइंट का कट कर सकता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई स्तर पे है। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध और तेज गति से हो गया है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो US की इकोनॉमी की जो फ्रेजाइल स्थिति है, GDP भी पिछले दो क्वार्टर में लगभग कोई ऑन एन एवरेज 1.5% के आसपास ही ग्रो किया है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई है, डिमांड में स्लो डाउन है, रिटेल डिमांड में स्लो डाउन है, तो ये सभी कारण है जिससे यूएस को एक सपोर्ट चाहिए, एक रेट कट चाहिए जिससे कि एक डिमांड में गति आने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे संदर्भ जो है वो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। ऊपर से जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, खास करके जो लड़ाई जो बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, उधर गाजा और इसराइल के बीच में जो युद्ध है, तो ये कंडीशंस काफी गहरा गई हैं जिससे कि गोल्ड को एक अच्छी सपोर्ट मिली है और डॉलर भी वीक हुआ है। तो आने वाले टाइम में,
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। उदयन, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And our friends, the headlines once again. Benchmark domestic indices close with gains. Sensex increases by over 300 points. Nifty closes above 24,860. Major Asian indices end mixed, and gold prices scale to new high, crosses over 1,09,000 in multi-commodity exchange. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from both of us, it's goodbye and namaskar.
Namaskar.
Market Mantra.